हमारी तो औकात छोटी है। फिर आप देखिए कि जो युहीतून का लफ्ज है ना, एहाता का लफ्ज आता है इसमें, एक दिमागी एहाता होता है। एहाता से आप इंग्लिश में इसको कैसे समझ सकते हैं, सराउंड करना, किसी चीज को आप कितना कैचअप करते हैं। बस आप देखिए कि आप एक लेक्चर सुनते हैं ना, कुछ लोग पूरे का पूरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ ग्रामर लेते हैं, पूरी बात समझ आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ को आधी आती है, कुछ को चौथाई आती है, किसी को आठवां हिस्सा आती है। ये क्या फर्क है? ये इसी बात का इजहार है कि वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। उसने बांटा है, ये तुम्हारे हिस्से का, ये तुम इतना ही लो भी, तुम इतना ले लो, तुम पूरा ले लो, तुम इतना कर लो। जैसे माँ बच्चों को चीजें बांटती है ना, रब ने दुनिया में भेजने से पहले हमें ये मुख्तलिफ सलाहियतें बांटी, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। हमारा काम क्या है? रदीतु बिल्लाहि रब्बन, रब की रजा पे राजी होना है। मेरे मालिक जो तूने मुझे दिया, मैं राजी हूँ। इस एंगल से आप देखें तो आयतुल कुर्सी आपको तकदीर पर ईमान करना सिखाती है, तकदीर पर आपका ईमान बढ़ा रही है। जो मेरे हिस्से का था मुझे मिल गया, मेरा कोई छीन नहीं सकता, किसी का मुझे मिल नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला मानी अलिमा आतैत वला मोती अलिमा मनात वला यन्फउ ज़ल जद्दी मिन्कल जद्द। फिर इंसान रब की और वसअतों का अंदाजा करता है। वसीअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। इसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और इन दोनों की हिफाजत इसे नहीं थकाती, और वही बुलंद मर्तबा और अजमत वाला है। अब यहाँ अल्लाह तआला की कुर्सी का जिक्र है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आयतुल कुर्सी में जो लफ्ज़ कुर्सी है मुतशबिहात में से है। आयतें दो किस्म की होती हैं, इंशाल्लाह हम सूरत आले इमरान के आगाज़ में पढ़ेंगे, एक मुहकम हुक्म वाली और एक मुतशबिहात। शुभा लग जाता है इसमें, जैसे मुझे बोलने में आ रहा है, यानी इसके असल मानी अल्लाह को पता है। लेकिन कुर्सी कुर्रासा करसा यकरसु पाइल अप करने को कहते हैं, कुर्रासा कॉपी को भी कहते हैं, नोटबुक को, पाइल अप होना, एक दूसरे के ऊपर तय बतय होना। यहाँ अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र है। कुर्सी क्या चीज़ है? ये शुभे वाले लफ्जों में से है। ऐसे लफ्जों के बारे में हमें यही कहना है कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, रब को पता है कि इससे क्या मतलब है। हमने मान लिया रब की कुर्सी है, लेकिन इसको तशबीह नहीं देनी दुनिया की चीजों से। दुनिया में जैसे हमारी कुर्सियां हैं या हमारा मामला है, ये नहीं करना, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं। अल्लाह ताला के साथ जब इंसान मामला रखता है तो फिर उसको बंदों वाला मामला नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला का ये जो फरमान है कि वसी कुर्सी युहुस समावाती वल अर्द, तो बेहतर है कि इसको आप उसकी कुर्सी ही कहें, रब की कुर्सी ने। एक रिवायत है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिए जाएं और सबको मिलाकर बसीत कर दिया जाए, यानी लेवल पे कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए, तो भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक हलका किसी चटियल मैदान में। यानी एक रिंग आप कहीं फेंकते हैं ना, एक बहुत बड़े मैदान में, तो वो रिंग नजर नहीं आती ना। इसी तरह ये इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। इसी से आप इसकी वसअतों का अंदाजा लगाइए। अल्लाह अकबर। एक मरफू रिवायत है, यानी सही रिवायत होती है इब्ने जरीर की, सातों आसमान कुर्सी में ऐसे हैं जैसे सात दिरहम ढाल में। एक और हदीस में आता है, कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक लोहे का हलका चटियल मैदान में। अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा कुर्सी के बारे में नबी सल्लम से सवाल किया, तो आपने कसम खाकर यही फरमाया कि फिर अर्श की फजीलत कुर्सी पर ऐसी है। एक औरत ने नबी सल्लम से आके दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में ले जाए। आपने अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए फरमाया, यानी आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं और साथ आप क्या कह रहे हैं, इसकी कुर्सी ने आसमानों जमीन को घेर रखा है, मगर जिस तरह नया पालान यानी पलंग या बेड चिरचिराता है, तो वो कुर्सी अजमते परवरदिगार से चिरचिरा रही है। इस तरह की और बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन काम क्या है हमारे करने का, रब की बड़ाई को महसूस करना है। उसकी कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेर रखा, तो वो जात कितनी बड़ी होगी, ये है असल में हम सब के सोचने की बात। वसीय कुर्सी युह समावाती वाल छाया हुआ, वो उसका इल्म है, वो उसकी हकूमत है, वो उसका इक्तदार है, लेकिन बात है हमारे दिलों को पकड़ने वाली। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और फिर फरमाया थकाती नहीं है उसको क्या चीज, आसमानो जमीन की हिफाजत। हिफ्ज़ुहुमा, हुमा की ज़मीर इधर आसमान और जमीन की तरफ है, तस्निया की ज़मीर है ये, ड्यूल, इन दोनों की हिफाजत उसको थकाती नहीं है। इस लफ्ज़ को थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है जो शायद कभी हमारी जुबान में नहीं बोला जाता। ये उदू का लफ्ज़ जो है हमजा वाव और दाल से है, बोझ और गिरा बार होने की वजह से किसी चीज का टेढ़ा हो जाना। आप फील करें कि आप किसी कुर्सी ही को ले लें, हल्की थी, कम वेट की थी, पतली थी, उस पे कोई ज्यादा वजन का इंसान बैठ जाए तो वो कुर्सी टेढ़ी हो जाती है ना, टेढ़ी होती है, क्यों कि ओवर वेट जब लोग उस पे बैठते हैं तो वो अपने वजन से गिरने लगती, चिरचिराने लगती है। तो यऊदू का मतलब ही ये है कि बोझ की वजह से किसी चीज का टेढ़ा होना। अब देखिए कि जब ज्यादा बोझ आता है ना, तो दो काम होते हैं, तसव्वुर में लाएं, एक तो चीज झुक भी जाती है, थक भी जाती है। तो लिहाजा वला या उदहू के आप दो तर्जमे करेंगे, एक क्या करेंगे, नहीं थकाती उसको इन दोनों की हिफाजत, और दूसरी क्या है, नहीं बोझल करती उसको इन दोनों की हिफाजत। क्या बात है अल्लाह ताला की, एक छोटा सा घर होता है और जरा बड़े घर में चले जाएं तो कहते हैं थक गए, काम करते करते थक गए, और अब कहता है जमीन और आसमान के निजाम चलाते चलाते मैं थका। इस आयत में अकीदे की एक बहुत बड़ी बात है, और वो क्या कि रब ने पैदा किया तो निजाम भी अकेले ही चला रहा है। कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं, और आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्या, कि अल्लाह ने दुनिया बना तो अकेले ली थी, लेकिन अब इंतजाम दूसरों के जरिए चलवा रहा है, ये बुजुर्ग, ये पीर, ये कुतुब अल्लाह की मदद करते हैं, उसको जरूरत नहीं, वो बेटे देते देते नहीं थकता, काम चलाते हुए नहीं थकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला की इन सिफात पे गौर करना है अपनी कमजोरियों को देखते हुए। सूरत अल-अहकाफ आयत 33 में भी इसी से मिलती हुई बात है, क्या इन लोगों को सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और इनको बनाते हुए ना वो थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को उठाएगा, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला थकता नहीं, ये कहना भी गलत है। बाज़ लोग ना समझी में ऐसे जुमले बोलते हैं, अल्लाह ताला थक गया है या अल्लाह ताला थक जाएगा, अल्लाह ताला के लिए ऐसे लफ्ज़ मत बोलिए। एक बड़ी प्यारी रिवायत शेयर करूंगी सही बुखारी की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है। तसव्वुर में लाएं जरा, आप सोचिए जरा क्या मैसेज दिया जा रहा है इस हदीस में, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, इसे रात दिन की बख्शिश भी कम नहीं करती, यानी देते देते लोगों को थकता नहीं है। आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है जब इसने आसमान और जमीन पैदा किए इसने कितना खर्च किया है, इसने इसमें कभी कोई कमी नहीं की जो इसके हाथ में है, और इसका अर्श पानी पर है, इसके दूसरे हाथ में तराजू है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। बस इन बातों को सुनते हुए एक ही लफ्ज़ ज़हन में रखिए कि अल्लाह अकबर, और मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि कदर का हक था। इतनी बड़ी जात है वो जिसके नाम ले लेके गुनाह करते हैं, जिसकी ना शुक्रिया करते ना फरमानियां करते हैं। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हो से, कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, नबी सल्लम बैठे हुए थे, फिर जब सूरज गरूब हुआ तो आपने फरमाया, ए अबू जर क्या तुझे मालूम है ये कहाँ जाता है, यानी सूरज जब हमसे गरूब होता है तो कहाँ जाता है। कहते हैं मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आज के दौर का कोई होता तो कहते वो दूसरी तरफ निकल आता है क्योंकि साइंस ने तरक्की की। लेकिन आप देखिए कि जो अंदर ढके हुए पर्दों में क्या हो रहा है, ये तो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। आपने फरमाया ये जाता है और सजदे की इजाज़त चाहता है, फिर इसे इजाज़त दे दी जाती है, और गोया कि इसे कहा जाएगा कि वापस वहाँ जाओ जहाँ से आए हो, फिर वो मगरिब की तरफ से तलू होगा। फिर आपने ये आयत तिलावत की, ज़ालिका मुस्तकर्रुल्लाह, सूरह यासीन की आयत का ये हिस्सा है, सही बुखारी की ये रिवायत है। यानी सूरज भी उसके सामने जाके सजदों में चला जाता है, इंसान तुम क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं झुकते उसके सामने। वहुवल अलीयुल असीम, बहुत बड़ा है।